मेरे अपने प्यारे युवा साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 27 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मुझे चूंकि एक और नया अच्छा विषय मिल गया है, इसीलिए मैं माफी चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में मैं आज भी आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे वायदा किया है और विश्वास रखें कि मैं यह वायदा जैसे ही अवसर मिलेगा डेफिनेटली निभाऊंगा। तो आज मैं मुख्य विषय के रूप में जिस पर बात करने जा रहा हूं फ्रेंड्स, वो है अधोसंरचना का विकास। और इस पर मैं क्यों बात करने जा रहा हूं, इसके बारे में मैं बाद में ही आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूज से। कल की आपने आकाशवाणी की न्यूज सुनी होगी, साथ ही साथ मैं यकीन करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपने डीडी न्यूज भी जरूर सुना होगा, देखा होगा। कभी कभी देखिए मिस कर जाएं, कोई बात नहीं है, आप सैटरडे संडे का मिस कर सकते हैं, उसमें ज्यादा बातें नहीं होती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि खासकर डीडी न्यूज आप कमोवेश सुन ही लें। अब तो ऐप पर भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर दूरदर्शन के सामने मौजूद ही रहना पड़ेगा, उसे आप दूसरे टाइम पर भी सुन सकते हैं। तो आपके लिए यह सुविधा तो उपलब्ध है जिसका आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए। हम लोगों के समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था, चूके सो चूके, बस अब फिर उसे वापस लाने का कोई उपाय था ही नहीं, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता था और मैं समझता हूं कि वो एक बेहतर स्थिति भी थी, उसका कोई अफसोस नहीं है। दोस्तों, कल के न्यूज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो केवल बिहार में अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है वह है। बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ है, उसके बारे में आप जानते हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। आज की अखबार की भी जो मुख्य खबरें हैं वो यही हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पॉलिटी को समझने के लिए, और या कह लीजिए कि पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, या दोनों के मिश्रण को समझने के लिए जो जरूरी हैं सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से, मैं कुछ उन्हीं बिंदुओं पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, फिर हम लोग मुख्य विषय पर आएंगे, क्योंकि और दूसरा कोई विषय, दूसरी कोई न्यूज वैसी है नहीं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जो बिहार में अभी नीतीश कुमार जी की जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए, जो गठबंधन है, गांठ का बंधन, जब दो लोगों को आप बांधेंगे तो गांठ लगानी पड़ेगी ना। जैसे हमारे यहां जब सात फेरे होते हैं लड़के और लड़की के विवाह के समय में, तो आप देखिए कि दोनों जो वस्त्र अपने कंधे पर डाले रहते हैं, और खासकर जो दुल्हन होती है उसकी साड़ी का जो एक पल्लू होता है उसके बीच में गांठ लगा दी जाती है, तो इसका मतलब है कि अब ये जीवन भर का बंधन हो गया। तो गठबंधन, तो ये जो गठबंधन सरकार है ये दो तरह की होती है, याद रखिए, गठबंधन दो तरह के होते हैं। पहला तो यह है कि आप चुनाव से पहले ही समझौता कर लेते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो वह गठबंधन हो गया। और यदि हमारी सरकार बनी तो ठीक है, जो जितने सीट पाएगा उसके हिसाब से एक फार्मूला बना करके हम सरकार का गठन करेंगे, जिस तरह से कि अभी नीतीश कुमार जी ने और लालू यादव जी की पार्टी ने चुनाव से पहले गठबंधन किया, और दोनों पार्टियों की जो संख्या थी, सदस्य संख्या, जीतने वाले एमएलएस की संख्या टोटल विधानसभा के सदस्यों की संख्या से आधे से अधिक थी, यानी कि उन्हें बहुमत मिल गया था, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्होंने सरकार बनाई। यह जो गठबंधन है दो रूपों में बहुत सही माना जाता है। मित्रों, सिविल सर्विस में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं हट करके आपसे थोड़ी बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं। दो तरीके से, दो रूपों में किस तरीके से, देखिए, पहला तो यह कि आपने चुनाव से पहले ही गठबंधन किया, यानी कि आपका मैनिफेस्टो तैयार हुआ, दोनों ने मिलकर के बनाया, और उस मैनिफेस्टो को लेकर के ही आप पब्लिक के सामने जाते हैं, जनता के सामने जाते हैं और वोट मांगते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जनता को आप बता रहे कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम ये मिलकर करेंगे। तो ये तो नैतिकता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सरकार, अब जो जनता है वो किसी भ्रम में नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। अब वो मान के चल रही कि ठीक है, ये दोनों हैं, वैचारिक स्तर पर इनमें कहीं ना कहीं समानता है, इन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है तो अपनी जो योजनाएं बताई हैं हम उससे भी सहमति व्यक्त करते हैं, तो अपने वोट के माध्यम से वो व्यक्त कर देते हैं या रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा यह भी होता है, राजनीतिक दृष्टि से भी यह लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि फिर दोनों पार्टियां एक स्थान से अपने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करती, सीटों का बंटवारा हो जाता है कि तुम यहां से चुनाव लड़ो, हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों में जो वोटों का विभाजन होगा वो विभाजन न होकर के एक पार्टी के वोट दूसरी पार्टी को मिल जाएंगे तो जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी अगर आप केंद्र सरकार को देखें तो केंद्र सरकार में भी ऐसा ही हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व चुनावी गठबंधन किया था जिसमें अकाली दल और आपकी शिवसेना ये पार्टियां शामिल थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के चुनाव में। तो ये तो हुआ मित्रों चुनाव पूर्व गठबंधन, जीत के आ जाते हैं आप सरकार बनाते हैं। बिहार में भी यही हुआ। इसके बाद 20 महीने के बाद क्या हुआ, आप कह लीजिए मतभेद होने शुरू होते हैं। मतभेद कई तरह के हो सकते हैं, विचारों को लेकर के हो सकते हैं, पदों को लेकर हो सकते हैं, कार्य प्रणाली को लेकर हो सकते हैं, है ना। जैसे अभी के मामले में एक नैतिकता का प्रश्न आया है, यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार का मामला आया है। आपको मालूम है कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, उनके खिलाफ आरोप लगे, सीबीआई इंक्वायरीज हुई, पूछताछ हुई और ये पाया गया कि बहुत अधिक इनके पास बेनामी संपत्ति है जिसका कोई ब्यौरा नहीं है, तो वह एक आरोप लगा। अब आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ ये कह रहे थे कि भाई आप पब्लिक को बताइए, पब्लिक को जवाब दीजिए भ्रष्ट, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी हैं वो सच पूछे तो मैं उनका व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सम्मान करता हूं, नेता तो खैर है ही है, राजनीतिक नेता तो है ही है, क्योंकि जब मैं दिल्ली में था तो उस समय जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो मुझे 2-3 बार उनसे मिलने का मौका मिला है। वो बहुत ही सुलझे किस्म के, बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति हैं और एक ऐसे राजनेता हैं जिन्हें बहुत सम्मान की निगाह से वैसे भी देखा जाना चाहिए, देखा जाता है भले ही वो किसी पद पर हो या न हो, मतलब उनकी अपनी एक वैचारिक निष्ठा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनडायरेक्ट में कहा गया कि भाई वो त्यागपत्र दे दें ताकि हमारी गठबंधन की सरकार चलती रहे, त्यागपत्र भी नहीं दिया गया, तो अंततः फिर चीफ मिनिस्टर ने खुद त्यागपत्र दे दिया। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो यही है कि अगर चीफ मिनिस्टर त्यागपत्र दे देते हैं तो पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाता है। एक मंत्री त्यागपत्र देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मंत्री ही हटेगा, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर दे देते हैं तो एक तरह से कैप्टन है, या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तो फिर मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, तो पूरी मंत्रिमंडल भंग हो गई। अब बट नेचुरल है कि अब लालू यादव जी की जो पार्टी है जो समर्थन दे रही थी, समर्थन ही सरकार में शामिल ही थी, वो अब नहीं करेगी। तो फिर अब स्थिति हुई कि चुनाव के बाद का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी और यह देखा गया कि अगर नीतीश जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को मिला दिया जाए सदस्य संख्या तो सरकार बन जाएगी। वही किया गया, दोनों के आधे से अधिक सदस्य हैं तो अब नीतीश जी फिर से चीफ मिनिस्टर हो गए हैं और अब दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, अब जब आप इस तरह से सरकार का समर्थन करते हैं तो उसके दो रूप होते हैं। पहला रूप यह है कि आप सरकार में शामिल हो जाइए, सरकार में शामिल हो जाइए मतलब आप भी मंत्री पद लीजिए और बाकायदे राजकाज संभालिए। दूसरा यह होता है कि नहीं, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से आपका समर्थन करेंगे। तो बाहर से समर्थन में बस यही है कि जब भी मतदान की बात आएगी, जब विधेयक पारित करना है तो पारित कराना है, अविश्वास प्रस्ताव अगर सरकार के खिलाफ आना है तो उसे गिराना है, फिर हम आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक जरूर है कि अगर आप सरकार में शामिल हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसे गठबंधन सरकार की जो लाइफ है वो तो ज्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि उनका भी अपना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो सरकार के हिस्से ही हो जाते हैं। अब बाहर जो समर्थन दे रहा है उसका तो यही है कि जब मर्जी होगा हम घोषणा कर देंगे कि हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, सरकार तुरंत गिर जाएगी। तो थोड़ी सी आशंका में रहती है सरकार अपने जीवन को लेकर के कि पता नहीं कब तक चलेगा कब तक नहीं। तो एक अच्छी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम सरकार में शामिल होंगे, बाहर से की बात नहीं है, सरकार के हम हिस्से बनेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार थोड़े लंबे समय तक चलेगी। दोस्तों, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है और इस घटनाक्रम को आप जो आपका फोर्थ पेपर है, जो इंटीग्रिटी वाला पेपर है, मोरलिटी इंटीग्रिटी वाला पेपर जर्नलिस्ट मेन्स का है ना, उसमें भी एक घटनाक्रम के रूप में ले सकते हैं कि पूरा देश कैसे अब भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के इस त्याग पत्र को इसी रूप में लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पूरी मुहिम छिड़ी हुई है उसमें वह भी शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी मुझे आपसे बात करनी थी। अब आइए मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं और मुख्य विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। दरअसल मैंने ये विषय इसलिए चुना है दोस्तों कि हमारे नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत जी, मैंने कई लेख आपको उनके प्रोवाइड भी किए हैं, उनका अभी एक भाषण हुआ है एक दिन पहले ही, जो फिक्की एक संगठन है फिक्की मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट का एक बहुत बड़ा संगठन है, बहुत ही प्रसिद्ध संगठन है, उसमें यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति वहां इकट्ठे होते हैं। वहां उनका एक लेक्चर रखा गया था, उस लेक्चर के आधार पर मैं कुछ बातें आपसे कहने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अमिताभ कांत जी ने खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कही, अधोसंरचना के बारे में, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने पॉइंट वाइज रखने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले मैंने पीपीपी मॉडल की चर्चा की थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की। एक और मॉडल है, इसी के साथ चल रहा है लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन यूज होता है, वो है बीओटी मॉडल। बी स्टैंड फॉर बिल्ट, टी ओ का मतलब है ऑपरेट, टी का मतलब है ट्रांसफर, यानी कि पहले बनाओ, बिल्ट यानी बनाओ, ओ का मतलब है ऑपरेट करो मतलब उसको चलाओ, बनाने के बाद उसको चलाओ, और इसके बाद ट्रांसफर, उसको वापस दे दो, ट्रांसफर कर दो। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, बंदरगाह है, तो इनमें पैसा बहुत लगता है, पहली बात। दूसरी बात है कि जितना पैसा लगता है रिटर्न उतनी जल्दी नहीं आता, बहुत लंबा समय लगता है। इस बीच में आप वसूल करते रहिए, रखरखाव भी करते रहिए, ये सारी चीजें होती रहती हैं, फिर 15-20 साल तक कहीं फिर वो प्रॉफिट की स्थिति आती है, जो हमारी कैपिटल लगी है वो वापस आती है, राइट। तो अब ये कहा गया कि अब जो पीपीपी मॉडल था उसमें बहुत सी खामियां आई, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, बावजूद इसके कि कुछ सेक्टर में ठीक भी हो रहा है। तो अमिताभ कांत जी ने कहा कि असली में उसमें जो कमियां रह गई वो ये है कि जब निजी क्षेत्र नीलामी में आया तो जोश में आकर के उसने खूब ऊंची ऊंची बोलियां लगा दी कि हम इतने में बना देंगे, हम इतने में बना देंगे, और बाद में जब वो बनाने लगा तो पता लगा कि इतने में तो बन ही नहीं रहा, ये घाटे का सौदा है, तो उसने उसको आधा अधूरा छोड़ दिया। तो इस तरह से पीपीपी मॉडल के बहुत से प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं और ये फिर बैंकों से लिया गया ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं। जो एनपीए है बैंकों का, नॉन पेमेंट जो एसेट है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों का है जो वापस करने की स्थिति में नहीं है, वो पूरा करने की भी स्थिति में नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये तो प्रॉफिटेबल रहा नहीं, तो न घर के न घाट के स्थिति आ गई है। तो दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो सरकार है, सरकार को अब ये बनाने वनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बना भी रहे हैं, देख रेख भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं, ये बेकार की बात है। उन्होंने दो देशों का नाम लिया, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया। ये आपको रेफरेंस नोट कर लेना चाहिए कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्या है कि अब अलग मोड पर आ गए हैं, और उन्होंने स्कूल, जेल, कॉलेज, बिल्डिंग्स, ये जितने भी बनाने का काम है ये सब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया कि आप लोग बनाइए, ये हमारे बस की बात नहीं है। और देखिए, जो लिबरलाइजेशन है, जो उदारीकरण है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सरकार अब बिजनेस में न जाए और ऐसे क्षेत्रों को प्राइवेट के हाथ में सौंपे। तो उन्होंने बीओटी जो मॉडल है उसकी जरूरत महसूस की है, उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। तो चूंकि इसमें पैसा बहुत लगता है तो, और सरकार उसका रख रखाव कर नहीं पाती है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि जो सरकार ने अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जो बनाई हुई है सरकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो कहा कि इस प्रोजेक्ट को बना दिया, बिल्ट कर दिया, तो अब ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट के हाथ में दे दे कि भैया लो तुम चलाओ, इसका तुम रख रखाव करो, 10 साल, 15 साल, 20 साल तुम रख रखाव करो, इसका पैसा वसूल करो, किराया वसूल करो, फेयर वसूल करो, जो भी है, और 15-20 साल के बाद फिर ये हमें वापस कर दो। जैसे लीज पर सरकार देती है ना, जमीन लीज पर देती है और दूसरी चीजें लीज पर, कि ठीक है 50 साल के लिए हमने आपको दिया, आप लीज रेंट इतना देते रहिए, लेकिन 50 ये आपकी संपत्ति नहीं है, 50 साल के बाद यह सरकार की संपत्ति हो जाएगी, फिर सरकार उसे वापस ले लेगी और फिर नए तरीके से उस पर काम करेगी। जैसे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम भी होना चाहिए कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। फ्रेट का मतलब है किराया, डेडिकेटेड मतलब उसी के लिए, कॉरिडोर का मतलब है गलियारा, मतलब एक ऐसा मार्ग बन रहा है, रेल मार्ग बन रहा है, जिस पर सिर्फ जो माल भाड़ा वाली जो गाड़ियां हैं, रेल हैं, वो चलेंगी, मालगाड़ी चलेगी। और इसके बन जाने के बाद से जो दो अगले साल पूरा होने वाले, सोच के देखिए कि जिस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में 14 दिन लग जाते थे, वो केवल 14 घंटे में पहुंच जाएगा, कल्पना करके देखिए। तो ये गवर्नमेंट बना रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बड़ा रेफरेंस है ये। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार ने बना लिया ना, अब इसकी जो जिम्मेदारी है, रख रखाव की जो जिम्मेदारी है, ऑपरेट करने की जो जिम्मेदारी है, वो सब जिम्मेदारी प्राइवेट वालों को दे दे बीओटी मॉडल के तहत, यानी कि अब संपत्ति उन्हीं की हो गई। 20 साल 25 साल 50 साल बात करें, जहां भी वो फिर समझौता होता है देने के बाद फिर उसको वापस ले ले। तो ये है दोस्तों बीओटी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे सरकार ने बनाए हुए हैं, अब सौंप दे उनको। एयरपोर्ट है हमारे, वैसे पोर्ट है, बंदरगाह है, इन सब जो सरकार ने ऑलरेडी बना रखे हैं, अब उनकी जिम्मेदारी सौंप दे प्राइवेट को, सौंप दे। हमारे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन तो ऑलरेडी बने हुए हैं, हाँ अब उसको जो भी रख रखाव करना है और अच्छा बनाना है वो प्राइवेट वालों को सौंप दे 20 साल 50 साल के बाद, और फिर अपने हाथ में वापस ले ले। तो ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, अर्थव्यवस्था का सवाल है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, हम सब की इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उसके बारे में कोई मौलिक विचार दे सकें। तो जब इस तरह के सजेशंस आते हैं तो यही सजेशंस एक तरीके से कह लीजिए हमारे अपने भी मौलिक विचार होते हैं, हम इसी के आधार पर फिर अपने सजेशंस देते हैं कि हाँ ये किया जा सकता है। और जब सरकार ऐसा करेगी तो देखिए क्या होगा, एक तो सरकार को अब पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो अब सरकार को जो कपास जो पैसा बच जाएगा, जो इनमें लगता वो जो पैसा बच जाएगा उसको सरकार हमारे एजुकेशन के लिए जरूरत है, हेल्थ के लिए जरूरत है, अदर सर्विसेज के लिए जरूरत है, उनमें उस पैसे को खर्च कर सकेगी। दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर को वो चीजें सौंप देने से जो हमारे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोगों को रोजगार मिल सकेगा, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर तो उन्हीं से काम कराएगा, और अगर लोगों को रोजगार मिलेगा, एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था तेज होगी। तो अर्थ इकोनॉमी तो इसी तरह से काम करती है, एक दूसरे से बहुत ही गहरे रूप में चीजें जुड़ी होती हैं। तो ये उन्होंने मित्रों कहा, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, एक क्लिपिंग से, खासकर जो भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है, या जो समूह होते हैं वो एक सामाजिक जो समूह होते हैं वो किसी को भी कोई सजा दे देते हैं, उसको लेकर के एक आर्टिकल है वसुंधरा राजे जी का, जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं आपको यह आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे यहीं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका हिंदी भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, तीन चार और आर्ट आपके पर आपके लिए मैं आर्टिकल और प्रेस क्लिपिंग्स, एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, अपनी जरूरत के हिसाब से आप उन्हें देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।